महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने हम सब मनुष्यों के लिए चौथे यज्ञ को बड़ा सुंदर दर्शाया है और कहा,
जाने अनजाने में जितने जीव मरे उनके प्रायश्चित के लिए बलि वैश करे। जाने अनजाने में जितने जीव मरे उनके प्रायश्चित के लिए बलि वैश करे। दस आहुति भात की देकर मन में भाव दया के लेकर, दस आहुति भात की देकर मन में भाव दया के लेकर। दया धर्म का मूल बताया अभिमान मत करना। हो ऋषि दयानंद ने समझाया पांच यजों का करना। दीन दुखी और निर्बल जनों की कष्ट हमेशा हरना।
चौथे यज्ञ में ऋषि ने हमें बताया कि हम बलि वैश्य देव यज्ञ करें। भाव है कि हमसे जाने अनजाने में जो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिन्हें हम मारना नहीं चाहते, कितने ही कार्य करने में हमसे वो जीवों की हत्या हो जाती है, हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु ये जीव हम मारना नहीं चाहते थे अनजाने में हमसे मरे हैं, उनका हम प्रायश्चित करें। और अनजाने में किए हुए कर्म का ही प्रायश्चित होता है, जानबूझ करके किए हुए कर्म का प्रायश्चित नहीं होता। हमने जानबूझ करके जो कर्म किया है उसका फल तो अवश्य मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। है मनुष्य, जैसे तू शुभ अशुभ कर्म करेगा उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। हाँ, अनजाने में भूल से अगर कोई कर्म हुआ है तो उसका प्रायश्चित होता है। जैसे दो व्यक्ति एक बगीचे में घूम रहे, बगीचे का चौकीदार आया, दोनों को पकड़ लिया, क्योंकि बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ था इस बगीचे में हर व्यक्ति को घूमना मना है। दोनों को पकड़ करके थाने में ले गया, बात अदालत तक पहुंची। जज साहब ने दोनों व्यक्तियों के बातों को सुना, दोनों व्यक्तियों के बयानों को सुनकर के एक को तो छोड़ दिया, भाई तुम जाओ, और एक व्यक्ति को 3 महीने की सजा दी। विचार करें, जुर्म तो दोनों ने एक ही किया था, दोनों बगीचे में घूम रहे थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति को छोड़ क्यों दिया और एक को 3 महीने की सजा क्यों दे दी? उसका एक ही कारण था, जिस व्यक्ति को छोड़ा गया उसने कहा, बाबूजी मुझे पढ़ना नहीं आता, पढ़ना आता तो मैं बगीचे में कभी नहीं घूमता, मैं तो अनजाने में आ गया हूं, भूल से आ गया हूं, आइंदा नहीं आऊंगा। जज साहब ने कहा, अच्छा जाओ फिर, आगे ध्यान रखना। उसको छोड़ दिया, कारण क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था, बोर्ड को पढ़ नहीं सका। दूसरे व्यक्ति की बातों से जाहिर होता था कि व्यक्ति पढ़ा लिखा था, बोर्ड को पढ़ने के बाद भी अंदर घूम रहा है, जानबूझ करके गलती कर रहा है, इसलिए इसको 3 महीने की सजा होनी ही चाहिए। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि अनजाने में ही किए हुए कर्म का ही प्रायश्चित होता है। और कहते, मनुष्य तू तो मनुष्य है, तेरे अंदर तो मननशीलता है, विचार करके कार्य करने की क्षमता तुझे परमात्मा ने दी है, इसलिए कर्म करने से पहले विचार कर ले। आज हम विचार नहीं करते, हम छोटे छोटे जीवों को सताते हैं। प्राचीन पुस्तक वेद है, वेद से पुरानी कोई पुस्तक ही संसार में नहीं है। वेद भगवान ने कहा है कि हम छोटे छोटे जीवों पर दया करें, उन पर दया करेंगे तो परमात्मा की कृपा भी हमें मिलेगी। हम छोटे जीवों को मार करके अपनी स्वाद बना करके और चाहते हैं कि हम बड़े हो जाएं, हम सुख में हमें मिल जाएं, कभी नहीं मिलने वाला है। बहुत सुंदर कवि के भाव हैं, ऐ मनुष्य जरा विचार करना।
कर कर बदियां बीत गई सदियां, काफी किए उत्पाति बस अभी जाने दे। कर कर बदियां बीत गई सदियां, काफी किए उत्पाति बस अभी जाने दे। जीवों को मार कर पेट का आहार कर, जीवों को मार कर
पेट का आहार कर कर दिए भेड़िए भी माते बस अब जाने दे कर कर बदिया बीत गई सदियां काफी किए उत्पात बस अब जाने दे इसलिए मारता है सेठिया बघारता है क्योंकि तू बड़ा बलवान है इसलिए मारता है सेठिया बघारता है क्योंकि तू बड़ा बलवान है वो तो परिंदा है दरिंदा है जानवर है सोच जरा तू इंसान है कर कोई मनुष्यता की बात बस अब जाने दे कर कर बदिया बीत गई सदिया काफी किए उत्पात बस अब जाने दे
हम विचार करके देगी हम किन जीवों को मारते जो हमसे कमजोर होते हैं हम कमजोरों को मारकर ही तो अपने पेट का आहार बनाते हैं अगर हम शेर हैं अगर हम चाहते हैं बहादुर हैं तो जाकर के शेर से लड़ें शेर का शिकार करें तब पता चले हमारी बहादुरी कैसी है शेर का शिकार भी करते हैं तो हाथ में हथियार लेकर हम अपनी बहादुरी पर घमंड करते हैं लेकिन वो बहादुरी हमारी बहादुरी नहीं है जो छोटे छोटे जीवों को मार करके अपने स्वाद को पूरा करते हैं बहुत सुंदर कवि नत्था सिंह जी के भाव हैं आगे
तीतर बटेर के गले पे छुरी फेर के समझा कि दिल ये दिलेर है तीतर बटेर के गले पे छुरी फेर के समझा कि दिल ये दिलेर है खाला है शिकार गर बिना हथियार कर शेर को तुमार गर शेर है फिर देखे तेरी औकात बस अब जाने दे कर कर बदिया बीत गई सदिया काफी किए उत्पात बस अब जाने दे कर कर घुटनों के बीच में दबा के एक मुर्गी को समझा कि तू बलवान है जिस भगवान ने बनाया बलवान तुझे उसमें भी वही भगवान है फिर क्यों रंगे खून से हाथ बस अब जाने दे कर कर बदिया बीत गई सदिया काफी किए उत्पात बस अब जाने दे कर कर बदिया बीत गई सदिया
कहा के तू दूसरों को सताता है लेकिन याद रख कर्म का फल तो अवश्य मिलता है हमारी दूसरों को सताने की भावनाएं कब बनती हैं जब हमारे मन में एक धारणा बैठ जाती है कि कर्म का फल नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि हम कर्म कितने ही कर लेंगे बस एक बार जाकर के गंगा में गोता लगा लेंगे तो हमारे सारे पाप वहीं पर रह जाएंगे उनका फल ही नहीं मिलेगा जब पापों का फल नहीं मिलेगा तो फिर पाप करने से हम डरेंगे क्यों लेकिन फल अवश्य मिलता है बहुत सुंदर किसने दृष्टांत में कहा एक व्यक्ति ने गंगा से जाकर के पूछा मां तू बड़ी पापी है सारे संसार के लोग पाप तुझ में छोड़ करके चले जाते हैं गंगा ने कहा मैं पापी नहीं हूं ये तो मैं मान लेती हूं कि लोग पाप करते हैं मुझ में छोड़ करके चले जाते हैं लेकिन मैं तो निरंतर बहती रहती हूं सारे पाप इकट्ठे करके मैं तो ले जा करके समुद्र को दे देती हूं समुद्र पापी है अब यह व्यक्ति समुद्र के पास में पहुंच गया और जाकर के कहता समुद्र तू बड़ा पापी है सारे संसार के लोग पाप गंगा में छोड़ते हैं, गंगा लाकर के तुम्हें दे देती है और तुम्हारा पानी तो यहाँ से बहकर भी नहीं जाता, इसलिए तुम्हारे पानी का स्वाद भी खारा खारा हो गया, सारे पाप इकट्ठे कर रखे हैं। अब ये समुद्र कहता है भाई पापी हम भी नहीं हैं, ये तो हम मान लेते हैं कि पाप लोग गंगा में छोड़ते हैं, गंगा लाकर के मुझे दे देती है, मेरा पानी यहां से बहकर भी नहीं जाता, लेकिन जाता है, आकाश में चला जाता है, बादल उठा करके ले जाते हैं, वहां चले जाते हैं सारे पाप। अब ये व्यक्ति ऊपर को नजर करके कहता है बादलों तुम बड़े पापी हो, सारे पाप तुमने इकट्ठे कर रखे हैं, इसलिए तुम्हारा रंग भी काला कलूटा है। लेकिन ये बादल बड़े पते की बात कहते हैं, ये कहते हैं भैया ये तो ठीक है कि लोग पाप गंगा में छोड़ती है, गंगा ला करके समुद्र को देती है और समुद्र से हम उठा करके ले आते हैं, ये तो बात सही है, लेकिन हम तो पोस्टमैन का काम करते हैं, हम तो डाकिये का काम करते हैं, जिसके पाप होते हैं उसी के घर जाकर के बरस जाते हैं। ठीक इसी तरह से चाणक्य महाराज कहते हैं कि जैसे हजार गांव के बीच में एक बछड़े को छोड़ो, वो अपने मां के ही स्तनों में जाकर के मुंह लगाता है, ऐसे ही मनुष्य का किया हुआ कर्म ये किसी भी चोले में पहुंच जाए वहीं पर इसे चिपट जाता है, भोगना पड़ता है, पूर्व जन्म के संस्कार पूर्व जन्म के कर्म भी हमें भोगने पड़ते हैं। मरते समय लोग कहते हैं इसकी आंखों में आंसू आ गए, ये रो रहा है, इसको अपनी बेटी की याद आ रही है, इसको अपने भाई की याद आ रही है, भाई को बुलाओ बेटी को बुलाओ, लेकिन वो भी आ जाते हैं फिर भी रोता रहता है, कारण क्या है? वो बेटी की या भाई की उस समय याद नहीं आती, उस समय तो इसके सामने इसके कर्मों की रील होती है, कर्मों को देख करके तुझे क्या मिलेगा, कैसी सजा मिलेगी, उसको देख करके रोता है। और कैसे रामायण में बहुत सुंदर एक प्रसंग में आता है, महाराजा दशरथ उनको शब्द भेदी बाण चलाने का बहुत अभ्यास था, जब शब्द भेदी बाण चलाने की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की तो उसको आजमाने के लिए सरयू नदी के किनारे पहुंच गए। उस समय श्रवण कुमार अपने बूढ़े माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते कराते उधर आए हुए थे, माता पिता ने कहा बेटा थोड़ा पानी पिला दो प्यास लगी है, माता पिता को तो बिठा दिया और ये लोटा लेकर के पानी की तलाश में चल दिया, आकर के देखा सरयू नदी पर आकर के इसने पानी भरने लगा, उधर महाराजा दशरथ बैठे थे कि कोई आवाज कहीं से आए, जैसे ही लोटा भरने की गड़गड़ की आवाज आई पानी की आवाज आई तो महाराजा दशरथ के कानों में आवाज पहुंची, विचार के ऐसा लगता है कोई जानवर है जो आवाज कर रहा है पानी में, बस वहीं से तीर छोड़ दिया, तीर छोड़ा तो आकर के श्रवण के सीने में लगा, श्रवण घायल होकर के गिर गया और हाय की आवाज निकली, जब आवाज महाराजा दशरथ के कानों में गई तो एकदम से महाराजा दशरथ कांप गए, क्योंकि विचार करते हैं ये किसी जानवर की आवाज तो नहीं है, ये तो लगता है किसी मनुष्य की आवाज है, आकर के देखा एक नौजवान घायल पड़ा है, खून बह रहा है शरीर से, एकदम से आकर के इस नौजवान का सर महाराजा दशरथ ने अपनी गोद में रख लिया और आंखों में पश्चाताप के आंसू बहा करके कहते हैं नौजवान तुम कौन हो, तुम यहां कैसे आए हो, मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। तो श्रवण कुमार कहते हैं मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा नाम श्रवण है, मैं अपने पिताजी के लिए अंधे माता पिता के लिए पानी लेने के लिए आया था, लेकिन अब मेरी हालत वो हो गई है मुझसे चला नहीं जाएगा, मैं वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा, ऐसा लगता है कुछ ही क्षण में मेरे प्राण भी निकल जाएंगे, लेकिन एक प्रार्थना है महाराज तुमसे, वो प्रार्थना मेरी स्वीकार कर लेना। श्रवण कहता है महाराज
पिता माता मेरे प्यासे उन्हें पानी पिला देना, पिता माता मेरे प्यासे उन्हें पानी पिला देना, मेरे दुख में दुखी होंगे, मेरे दुख में दुखी होंगे, दिलासा जा दिला देना, पिता माता मेरे प्यासे तुम्हें पानी पिला देना पिता माता। पिला करके उन्हें पानी बचाना उनकी जिंदगानी, पिला करके उन्हें पानी बचाना उनकी जिंदगानी, बचाना उनकी जिंदगानी। अगर ये हो सके मुझसे उन्हें ला कर मिला देना, अगर ये हो सके मुझसे उन्हें ला कर मिला देना। मेरे दुखी में दुखी होंगे,
श्रवण कुमार कहते हैं महाराज मेरे माता पिता प्यासे हैं और मुझे भी जाए हुए काफी देर हो गई, वो बड़े दुखी होंगे, जाकर के उन्हें पानी पिला देना, अगर हो सके तो एक बार मुझसे मिला भी देना, मैं तो नहीं जा सकूंगा, मेरे माता पिता को यहां ले आना, लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना, नहीं तो वो प्यासे ही रह जाएंगे। और श्रवण कहता है
न ये कहना हुआ घायल है श्रवण मेरे सर से, न ये कहना हुआ घायल है श्रवण मेरे सर से, है श्रवण मेरे सर से,
पिलाने से पहले पानी नवाणी को हिला देना, पिलाने से पहले पानी नवाणी को हिला देना।
श्रवण कहता है महाराज पानी पिलाने से पहले ये मत बता देना कि तुम्हारा बेटा मेरे सर से मेरे तीर से घायल हो गया है, अगर ये तुमने बता दिया तो फिर वो पानी भी नहीं पिएंगे, वो तो ऐसे ही रो रो करके मर जाएंगे, पानी पिलाने से पहले मत बताना।
रक्षक हो अवध नरेश उन माँ बाप दोनों के,
महाराज अब तो तुम ही रक्षक हो मेरे माता पिता के, मेरी तो बड़ी इच्छा थी मैं सब जगह घुमा करके तीर्थ कराता, लेकिन अब तो मैं जाने वाला हूं संसार से, बस यही प्रार्थना है।
रक्षक हो अवध नरेश उन माँ बाप दोनों के, उन माँ बाप दोनों के,
मेरे प्राणों के बदले आप उनको ये सिला देना, मेरे प्राणों के बदले आप उनको ये सिला देना।
मेरे दुखी में दुखी होंगे दिलासा जा दिला देना, पिता माता मेरे प्यासे उन्हें पानी पिला देना।
ये कहा कि बस इतना चाहता हूं उनको पानी पिला देना, उनका ध्यान रखना, मैं तो जाने की तैयारी में हूं। महाराजा दशरथ की आंखों में आंसू हैं, श्रवण कुमार का सर अपनी गोद से नीचे रखा, लोटे में जल भर करके चले श्रवण कुमार के माता पिता के पास में आए। श्रवण की बात याद आई कि पानी पिलाने से पहले तो मुझे बोलना भी नहीं है, अगर मैं बोला तो आवाज को पहचान जाए। महाराजा दशरथ चुपचाप जाकर के श्रवण कुमार के माता पिता के सामने बैठ गए, कदमों की आहट तो सुनी तो पिता कहते हैं बेटा बड़ी देर लगा दी पानी लाने में, क्या पानी बहुत दूर था? हम तो प्यास के मारे मरे जा रहे हैं, ला बेटा पानी पिला, और तू एक बात तो बता, बोलता क्यों नहीं है। महाराजा दशरथ फिर भी चुप रहे। पानी वाला लोटा श्रवण कुमार के पिताजी के हाथ से छुआ दिया। लोटा हाथ से छुआया तो दशरथ का हाथ भी लगा। जब हाथ से हाथ मिला दोनों का, तो एक बात तो आप जान सकते हैं, जिसकी आंखें नहीं होती उसकी मन की आंखें बड़ी तेज होती है, उसकी स्पर्श शक्ति बहुत तेज होती है। महाराजा दशरथ का जब हाथ श्रवण कुमार के पिताजी ने छुआ तो एकदम से हाथ पीछे हटा लिया और कहते हैं, ऐसा लगता है तुम मेरे श्रवण नहीं हो। तुम कौन हो? मेरा बेटा कहां है? फिर भी नहीं बोले तो श्रवण कुमार के पिताजी कहते हैं, नहीं बोलोगे तो हम पानी नहीं पिएंगे। पहले बताओ हमारा बेटा किधर है, कहां छोड़ करके आए हो, तुम कौन हो? जब कोई बात नहीं बनी तब महाराजा दशरथ सर झुका करके बैठ गए और बड़ी हिम्मत करके कहते हैं, महाराज तुम्हारा बेटा श्रवण मेरी भूल से अनजाने में मेरे तीर से घायल हो गया। जब ये शब्दों को सुना तो दोनों मां बाप फूट फूट करके रोने लगे। रो करके कहते हैं, महाराज तुम कौन हो? इसने कहा, मैं महाराज दशरथ हूं। इन शब्दों को सुनकर के बूढ़ा होश में आकर के कहता है, महाराज आज तुमने हमारा सहारा हमसे दूर कर दिया। केवल हमारा बेटा ही तो हमारा सहारा था, आंखों से हम देख नहीं सकते थे, लेकिन याद रखना ये बूढ़े माता पिता के दुखी हृदय की इस आह को, आज जैसे हम अपने बेटे के दुख में दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, ठीक वैसे भाव है कवि के। श्रवण कुमार के पिताजी रोते रोते कहते हैं,
मेरे पुत्र के प्राण को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राण को लेने वाले, न सुख पाएगा न सुख पाएगा दुख हमें देने वाले, मेरे पुत्र के प्राण को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राण को लेने वाले, न सुख पाएगा दुखी न सुख पाएगा दुखी हमें देने वाले, मेरे पुत्र के। कर्म करने से पहले सोचा ना बिचारा, वो ना समझ दुख का है कारण हमारा, कर्म करने से पहले सोचा ना बिचारा, वो ना समझ दुख का है कारण हमारा, मनुष्य तो कहाते हैं मनुष्य तो कहाते हैं मनन करने वाले, न सुख पाएगा दुख हमें देने वाले, न सुख पाएगा दुख हमें देने वाले, मेरे पुत्र के प्राण को लेने वाले, न सुख पाएगा दुख हमें देने वाले। अंधों की लाठी था श्रवण हमारा, बुढ़ापे में अभी कौन देगा सहारा, अंधों की लाठी था श्रवण हमारा, बुढ़ापे में अभी कौन देगा सहारा, चला छोड़ हमको
किसके हवाले, मेरे पुत्र के प्राण को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राण को लेने वाले। न सुख पाएगा दुखी, न सुख पाएगा दुखी, हमें देने वाले मेरे पुत्र के प्राण को लेने वाले।
और अंत में माता पिता रोते रोते कहते हैं, महाराज आज हमारी बात याद रखना, इसे तू हमारी तरफ से दुखी हृदय से श्राप समझ लेना कि आज
हम हैं दुखी पुत्र के दुख में, जैसे तू होगा दुखी पुत्र के दुख में वैसे। हम हैं दुखी पुत्र के दुख में, जैसे तू होगा दुखी पुत्र के दुख में वैसे। कितने नरेश गीत, कितने नरेश गीत ईश्वर के गाले, न सुख पाएगा दुख हमें देने वाले, न सुख पाएगा दुख हमें देने वाले, मेरे पुत्र के प्राण को लेने वाले, न सुख पाएगा दुख हमें देने वाले, न सुख पाएगा दुख हमें देने।
कहा कि जैसे आज हम अपने बेटे के गम में, अपने बेटे के दुख में तड़प तड़प करके मर जाएंगे, वैसे ही आज महाराज तू भी याद रखना, तू भी अपनी संतान के गम में, दुखों में ऐसे ही तड़प तड़प करके मर जाएगा। आप जानते हैं जिस समय महाराजा दशरथ मृत्यु सैया पर पड़े हैं, आंखों में आंसू हैं, कौशल्या रानी कहती है, प्राणनाथ रो क्यों रहे हो, आंखों में आंसू किस लिए हैं? तो महाराजा दशरथ ने एक बात कही, रानी आज मैं देख रहा हूं अंतिम समय, मेरे सामने बूढ़ी और एक बूढ़ा बैठे हैं जो कह रहे हैं कि देख महाराज, वो बात हमारी सामने है तेरे, आज तू संसार से जा रहा है और तेरे चारों में से एक भी पुत्र तेरे सामने नहीं है। पता चलता है मनुष्य जैसा करता है वैसा उसे अवश्य ही भरना पड़ता है। अंतिम समय में रोता इसीलिए है, दुखी इसीलिए होता है क्योंकि वो कर्मों की रील सामने दिखाई देती है। इसीलिए महर्षि दयानंद जी कहते हैं, संसार में आकर के हम ऐसे कर्म करें कि जिससे हमें बाद में पछताना ना पड़े, जिससे हमें बाद में दुखी ना होना पड़े। और कैसे कर्म करें और विचार करें, संसार में आकर अगर हम पाप कमाएंगे तो फिर दुख ही दुख मिलेगा, बाद में पछताने के सिवाय कुछ और मिलने वाला नहीं होता है। और बाद में पछताने से फिर क्या होगा? बहुत सुंदर किसी उर्दू के शायर ने कहा है कि वक्त पर काफी है कतरा अब्र खुश हंगाम का, वक्त पर काफी है कतरा अब्र खुश हंगाम का, जल गया जब खेत में बरसा तो फिर किस काम का। फसल सूख जाने के बाद में वो फसल फिर उगती नहीं है जो फसल समाप्त हो गई। ऐसी जो समय निकल गया है बुरे कर्मों में, पापों में, फिर पछताते रह जाओगे, यही तो भाव है कवि के, याद रखना।
तू जो पापों में जीवन बिताएगा, तू जो पापों में जीवन बिताएगा, याद रखना बहुत पछताएगा, याद रखना बहुत पछताएगा। तू जो पापों में जीवन बिताएगा, तू जो पापों में जीवन बिताएगा, याद रखना बहुत पछताएगा, हाँ याद रखना बहुत पछताएगा। छोड़कर सारी दुनिया को जाना पड़े, छोड़कर सारी दुनिया दुनिया को जाना पड़े, शर्म से मुंह कफन में छुपाना पड़े, शर्म से मुंह कफन में छुपाना पड़े।
खूब नैनों से आंसू बहाएगा, याद रखना बहुत पछताएगा, याद रखना बहुत पछताएगा। तुझो पापों में जीवन बिताएगा, तुझो पापों में जीवन बिताएगा, याद रखना बहुत पछताएगा।
चंद रोजा है जीवन ये संसार में, चंद रोजा है जीवन ये संसार में, भूल बैठा तू रह करके परिवार में, भूल बैठा तू रह करके परिवार में।
साथ कोई ना तेरा निभाएगा, याद रखना बहुत पछताएगा, साथ कोई ना तेरा निभाएगा, साथ कोई ना तेरा निभाएगा, याद रखना बहुत पछताएगा। तुझो पापों में
श्रेष्ठ कर्मों से तेरा नहीं वास्ता,
कैसे सुख मिले कैसे चैन मिले, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं,
कर्म प्रधान विश्व रची राखा, विश्व रची राखा, विश्व रची राखा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जैसा किया तैसा फल चाखा। श्रेष्ठ कर्मों से तेरा नहीं वास्ता, तूने पकड़ा है मूर्ख गलत रास्ता, तूने पकड़ा है मूर्ख गलत रास्ता।
कौन मार्ग तुझे बतलाएगा, कौन मार्ग तुझे बतलाएगा, याद रखना बहुत पछताएगा, याद रखना बहुत पछताएगा। तुझो पापों में जीवन बिताएगा, तुझो पापों में, तुझो पापों में जीवन बिताएगा, याद रखना बहुत पछताएगा, याद रखना बहुत पछताएगा।
छल कपट छोड़ कर ओमिका जाप कर, छल कपट छोड़ कर ओमिका जाप कर, मन के दर्पण को बेमोल तू साफ कर, मन के दर्पण को बेमोल तू साफ कर।
फिर तो दाता के दर्शन तू पाएगा, याद रखना बहुत पछताएगा, याद रखना बहुत पछताएगा। तुझो पापों में जीवन बिताएगा, याद रखना बहुत पछताएगा, याद रखना बहुत पछताएगा, याद रखना बहुत पछताएगा, याद रखना बहुत पछताएगा।
कहा कि अगर तूने अपने जीवन को पापों में लगाए रखा, प्रायश्चित नहीं किया, उन पापों को नहीं छोड़ा, तो सिवाय पछताने के कुछ नहीं मिलेगा। भूल से अनजाने में जो कुछ तुझसे हो गया है उस पर विचार कर और प्रभु से कहे, प्रभु ये अनजाने में हुआ है, आइंदा मैं इस कर्म को नहीं करूंगा, क्योंकि मनुष्य वही है। बहुत सुंदर किसी कवि के भाव हैं।
अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है, अगर गलती राह भी दिखाती है। बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए, जो गलती करके पछताए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं।
कहा के जो गलती करके पछताए, वही इंसान होता है। इसीलिए हम प्रायश्चित करें उन कर्मों का जो अनजाने में हमसे हुए हैं, जिन्हें हम करना नहीं चाहते हैं, जिन जीवों को मारना नहीं चाहते थे, चलने फिरने में और कार्य करने में जो हमसे मर गए हैं, उनका प्रायश्चित बैठ करके प्रभु से करें। प्रभु आगे ऐसा न हो, हम यही चाहते हैं प्रभु उन कर्मों को हमें माफ करना जो हमसे अनजाने में हुए हैं। इसीलिए तो हवन में यज्ञ करते समय अंत में बलि वैश्य देव यज्ञ की आहुतियां डालते हैं, भात की 10 आहुतियां। तो ऋषि ने हमें कहा हम बलि वैश्य देव यज्ञ भी अपने जीवन में अपनाएं, किसी प्राणी मात्र को भी अपनी तरफ से कोई कष्ट ना दे, हमारा कोई ऐसा कर्म ना हो जिससे किसी को दुख पहुंचे, किसी को परेशानी हो। और पांचवा जी ऋषि ने बड़े सुंदर शब्दों हमें कहा है, और वो पांचवा यज्ञ वानप्रस्थी के या ब्रह्मचारी के या सन्यासी के लिए नहीं है, क्योंकि ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा है, ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और सन्यास। स्कूल में जब हम शुरू शुरू में बच्चा पढ़ने जाता है, उसको भी ऐसे सिखाते हैं, पहले जोड़ना सिखाते हैं, फिर घटाना सिखाते हैं, फिर गुणा करना सिखाते हैं, फिर भाग सिखाते हैं। ऐसे ही तो हमारा जीवन है। शुरू के 25 वर्ष होते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम के, जिसमें शक्ति जोड़ी जाती है, तेज जोड़ा जाता है, विद्या जोड़ी जाती है, धन जोड़ा जाता है, सब कुछ उस 25 वर्ष में हम जोड़ लेते हैं। हम अपनी नींव ऐसी मजबूत कर लेते हैं कि आगे हमें पछताना नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति को मकान बनाना है और वो आगे की सोचता है कि इसमें मुझे 4 मंजिल भी खड़ी करनी कर सकते हैं, तो हम नीचे की नींव उसकी बड़ी पक्की, बड़ी मजबूत रखते हैं। ये तो हमारा नींव है। कहते हैं ब्रह्मचर्य पहला आश्रम है और दूसरा ग्रस्त आश्रम, बच्चे को घटाना सिखाते हैं। ग्रस्त आश्रम में धन भी खर्च होता है, शक्ति भी खर्च होती है, सब कुछ खर्च होता जाता है, 25 वर्ष तक खर्च होता रहता है। लेकिन उसके बाद एक तीसरा आश्रम आता है, इसे वानप्रस्थ कहते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता है, जैसे बच्चे को गुणा सिखाई जाती है, जो धन जो विद्या हमारे पास में है उसको और हम बढ़ाएं, और उसके बाद 25 वर्ष तक बढ़ाते जाएं, संसार का उपकार भी करते जाएं, और उसके बाद फिर सन्यास आश्रम आता है। जैसे बच्चे को लास्ट में सिखाते हैं भाग करना, तकसीम करना, ऐसे ही वो सन्यासी भी उसमें से फिर दूसरों को बांटता जाए। सन्यासी का कोई अपना घर नहीं होता, कोई अपना परिवार नहीं होता, उसका सारा संसार अपना होता है, उसका हर व्यक्ति अपना परिवार होता है। इसलिए हमारा जीवन इन 4 भागों में बांट करके कहा। और ग्रस्त आश्रम तो सबसे श्रेष्ठ आश्रम है, सबसे ज्येष्ठ आश्रम है, लेकिन आज हमने अपने जीवन को इन 4 भागों में नहीं बांटा है। हम अपने उस सिद्धांत को ठुकरा करके आज की इस भौतिकवादी चकाचौ में फंस करके हमने इस जीवन को आज 10 भागों में बांट करके रखा है। पहाड़े तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज आपको मैं एक ऐसा पहाड़ा सुना रहा हूं शायद आपने पहले कभी सुना। ये इस मानव का पहाड़ा। मानव ने आज अपने जीवन को बचपन से और बुढ़ापे तक इस स्थिति में डाल करके चलाया। कहते हैं जब बरस हुआ 10 का तो लगा बातों का चस्का, बड़ों में बैठा है, पिताजी कहते हैं बेटा थोड़ा पानी पिला दो, कहता ठहरो बात सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है, पिता की बात नहीं सुनी। और आगे चले जब बरस हुए 20, अब दूसरों की रीस देखा, ये ऐसे कपड़े पहन करके आया तो मैं भी ऐसे कपड़े बनवाऊंगा, देखा इसके बालों का कटिंग बहुत अच्छा है मैं भी ऐसे बाल कटवा करके आऊंगा, देखा ये पिट करके आया तो मैं भी पिट करके आऊंगा, दूसरों की रीस करता है। और आगे चले जब बरस हुआ तीसरा, अब हर समय घर का किस्सा, दोस्तों में बैठा है, कहता भाई साहब आज तो दो रोटी ज्यादा ही खा गया। क्यों खा गए भाई? कि पत्नी ने खाना बहुत अच्छा बनाया था। घर के किस्से में लगा है, अभी भी ये नहीं कि संसार में तो किस लिए आया था, भौतिक बाद में पड़ा है। और आगे चले, अभी तो 30 वर्ष बीते हैं, अभी तो 70 बकाया है, क्योंकि औसत आयु हमारे विद्वानों ने मनुष्य की 100 वर्ष मानी है। इससे ज्यादा भी मनुष्य जी सकता है और इससे पहले भी ट्रांसफर हो जाता है। जब बरस हुए 40, आधा काम आधी गाली, शक्ति कुछ कम हुई, बाहर से आए बच्चों पर गुस्सा दिखाते हैं, ये काम नहीं हुआ, ये काम तो किया ही नहीं, ये तो पीछे पड़ा, मैं होता तो ये करता, मैं होता तो वो करता, गुस्सा आता है। और आप जानते हो कमजोरी में गुस्सा ही आता है, गुस्सा बहुत आता है कमजोरी। और आगे चले, जब बरस से 50, अब दूसरों की आस, खाट पर बैठे हैं, थक करके आए हैं, कोई बेटा आता तो पानी मांगता, लेकिन आता कोई पास में नहीं है, सब भाग करके निकल जाते हैं। अभी तो आधी उम्र बीती है, अभी तो आधी बकाया है। कहते हैं जब बरस हुआ 60, अब तो दो रोटियों का भी घाटा। शहर की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन गांव देहात में अभी भी बेटे की बहुएं पर्दा करती हैं बड़ों से। जब 60 हुआ तो दो रोटियों का भी घाटा हो गया, क्योंकि खुद की पत्नी आकर के कहती है घर में काहे को बैठे हो, बाहर जाओ, बेटे की बहू को पर्दा करना पड़ता है। बेचारे का घर भी छूट गया 60 वर्ष की अवस्था में। घर से बाहर बैठा है, कोई पास में आ गया तो पानी मांग लिया, रोटी मांग ली, नहीं तो भूखा ही बैठा है। और जब बरस हुए 70, अब तो भूल गया सारे 74, क्योंकि उठ तो सकता ही नहीं, बोल सकता ही नहीं, कोई पास में आता ही नहीं है, किस पे दिखाए गुस्सा, किस पे दिखाए रोग, सब रोग खत्म हो गया। और जब बरस हुए 80, अब और शरीर में बीमारी हो गई, सब इंद्रिया शिथिल हो गई, कटी सब बातों की रस्सी, पानी की इच्छा नहीं है, मुंह में डाल दिया तो पी लिया। जब बरस हुए 90, वहीं थूके और वहीं दबे, क्योंकि बीमारियों ने शरीर में घर कर लिया, खांसी उठती है सारी सारी रात, थूकता रहता है और राख में उसको बंद करता रहता है। जब बरस हुए 100, अब न किसी का डर और न किसी का भव। 100 वर्ष की अवस्था में अगर बूढ़ा पेशाब कर दे खाट पर, तो मोहल्ले पड़ोस वाले भी कहते हैं जी कोई बात नहीं, अब ये 100 वर्ष का हो गया है। खाट पर टट्टी कर दे, कोई बात नहीं, 100 वर्ष का हो गया है। 100 वर्ष की अवस्था में इसके सारे लाइसेंस फ्री हो जाते, कुछ भी करता जाए। लेकिन इसलिए थोड़ी हमें जीवन मिला था, हमें जीवन मिला था ऋषि मुनियों के बताए रास्ते पर चल करके, इसको दर बदर सीढ़ी व सीढ़ी चला करके अपने उस आनंद को प्राप्त करते। और ग्रस्त जीवन तो सबसे श्रेष्ठ आश्रम है, इसी आश्रम को श्रेष्ठ की महानता पर लाने के लिए महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने पंचमाज विधि में ये अंतिम यज्ञ अतिथि यज्ञ बतलाया है और कहा,
जो भी अतिथि घर पर आए मान करो, ग्रस्थी का है यज्ञ पांचवा ध्यान धरो। जो भी अतिथि घर पर आए मान करो, ग्रस्थी का है यज्ञ पांचवा ध्यान धरो। करना इन्हें यथाशक्ति से, होना मत विचलित भक्ति से। करना इन्हें यथाशक्ति से, होना मत विचलित भक्ति से। करना अच्छे काम नरेश तो पछताएगा वरना। ऋषि दयानंद ने समझाया पांच यजों का करना। दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा हरना। हो, हो, हो,
हो। पांचवा यज्ञ कहा कि हम अतिथि यज्ञ करें, और ये यज्ञ गृहस्थियों के लिए है, क्योंकि ब्रह्मचारी के लिए नहीं है। ब्रह्मचारी तो गुरुकुल में पढ़ता, वैसे ही अलग रहता, माता पिता से खर्च लेता है, वो नहीं कर सकता। गृहस्थी कर सकता है, वानप्रस्थी भी दूसरों की गृहस्थी के सहारे पर रहता है, और सन्यासी का भी कुछ नहीं होता, वो भी गृहस्थी के द्वारे पर ही तो जाता है। जितने भी तीन आश्रम है सब गृहस्थी के सहारे पर टिके होते हैं। गृहस्थी जो है यही महान आश्रम है। कुछ व्यक्ति कहते हैं जी शादी बड़ा जंजाल है, शादी कर ली तो फंस गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन कहते हैं जो सही अर्थ में उसको समझ जाते हैं वो शादी ग्रस्त आश्रम से श्रेष्ठ आश्रम किसी को मान ही नहीं सकते। बस समझने की आवश्यकता है, लेकिन समझते क्यों नहीं, क्योंकि जब संस्कार होता है विवाह संस्कार, उस समय तो पंडित जी से कहते पंडित जी जल्दी जल्दी फेरे फिरवाओ, समय नहीं है, ब्याह का बहुत काम बाकी पड़ा है। भाई ब्याह का कौन सा काम बाकी पड़ा है, दोस्तों को दावत खिलाने का और पार्टियां करने का। वह विवाह का विशेष काम तो वही है कि जो पति पत्नी बनने जा रहे हैं उनको अच्छा संदेश मिल जाए, अच्छी शिक्षा मिल जाए, जिनसे उनका जीवन अच्छा बने। और कौन सा विवाह का काम है और विवाह का मतलब क्या है पहले तो यही समझे। कहते हैं वी कहते हैं विशेष को, वह कहते हैं जिम्मेदारी को। कहते हैं ब्रह्मचारी आज से विशेष जिम्मेदारी को निर्वाह करने के लिए तत्पर है, तैयार है, वो विवाह है, नहीं तो ऐसी थोड़ी विवाह होता है। और पति पत्नी जब यज कुंड में बैठते हैं, यज वेदी पर बैठते हैं, तो पंडित जी यही तो समझाते हैं, लेकिन बेचारे को समझाने का टाइम कौन देता है। नहीं तो मंत्रों के अर्थ समझाते हैं, जैसे पंडित मंत्रों से वर वधु से बुलवा करके कहते हैं कि मंत्रों का इस तरह से पाठ करो, सम्य जंतु विश्व देवा आदि आदि मंत्र बुलवाते हैं, उनके ही भाव होते हैं कि देखो आप और हम पति पत्नी कहते हैं, सबको साक्षी मान करके कि हम मिलकर के रहेंगे और ऐसे मिलकर के रहेंगे जैसे दूध और पानी मिलकर के रहते हैं। और बहुत सुंदर भाव है कवि के, जिस ग्रस्त जीवन में विचार मिले होते हैं वही तो महान होता है। कवि के भाव हैं, एक घर का राजा एक घर की रानी, एक घर का राजा एक घर की रानी, जब सतग्रस्ती बन जाए तो फिर कैसी परेशानी, एक घर का राजा एक घर की रानी, रानी एक घर का राजा। फूलों की बाती पति पत्नी खिलके, फूलों की भांति पति पत्नी खिलके, जीवन की राहों में चले दोनों मिलके, जीवन की राहों में चले दोनों मिलके, ऐसे मिले हो जैसे हो दूध पानी, जब सतग्रस्ती बन जाए तो फिर कैसी परेशानी, एक घर का राजा एक घर की रानी, हाँ एक घर का राजा। कहा के संसार में पति पत्नी ऐसे मिलकर के रहें जैसे दूध और पानी मिलकर के रहते हैं। कैसे मिलते हैं दूध और पानी? कहते हैं एक बाल्टी में पानी है, एक बाल्टी में दूध है। पानी ने दूध से कहा, भाई साहब आप तो बड़े अच्छे हैं, आपकी बाजार में बहुत कीमत है, आपका रंग भी बहुत अच्छा है, हमें अपना मित्र बना लो। दूध ने कहा, आ जाओ हमारे पास। पानी दूध के पास में पहुंच गया, अब दूध ने मित्रता निभाई, अपना रंग दिया, अपना रूप दिया, अपना स्वाद दिया और बाजार में अपने भाव में बिकवा दिया। हलवाई के पास में दूध पहुंचा तो उसने देखा ध्यान से, ऐसा लगता है इसमें पानी है। अब पानी को जलाने के लिए दूध को भट्टी पर चढ़ा दिया, नीचे से आग जलने लगी तो दूध परेशान हुआ क्योंकि आग जली नीचे से। दूध परेशान होकर के तो पानी ने कहा, भाई साहब मित्र ऐसा लगता है तुम्हें कुछ परेशानी दिखाई दे रही है। दूध ने कहा, हां परेशानी तो है, नीचे से अग्नि जल रही है। तो ये पानी कहता, मित्र चिंता मत करो, परेशान मत होना, तूने मुझे अपना रंग दिया है, अपना रूप दिया है, बाजार में अपने भाव में बिकवाया है, अपनी मित्रता तूने निभाई है, तो मेरा भी तो फर्ज है, मैं भी अपनी मित्रता निभाऊंगा, जब तक तेरे पास में हूं तुझे आंच नहीं आने दूंगा। कहते हैं पानी जलता रहा एक एक बूंद करके अपने आप को समाप्त कर दिया, लेकिन अपने मित्र को आंच नहीं आने दी। जो जब पानी के जलने के बाद दूध ने देखा चारों तरफ कढ़ाई में कि मेरा मित्र कहां है, कहां गया, मुझसे भी छुड़ गया, मानो कढ़ाई से बाहर निकल के देखना चाहता है कहां गया है। जब नीचे से अग्नि जलती देखी तो देखा इसी ने मेरे मित्र को छीना है, मित्र की जुदाई में इतना गम हुआ, इतना दुख हुआ, गुस्सा भी इतना आया कि मानो कढ़ाई से बाहर निकल करके अग्नि को बुझाना चाहता है। हलवाई ने देखा, अरे दूध को तो बड़ा गुस्सा है मित्र के भी छुड़ने का, थोड़ा सा पानी लिया उसमें डाल दिया, दूध फिर शांत होकर के बैठ गया क्योंकि उसे उसका मित्र मिल गया है। कहते हैं ग्रस्त जीवन में पति पत्नी जब ऐसे रहते हैं, एक दूसरे के दुख को बांट करके रहते हैं, तभी तो घर में स्वर्ग रहता है। और स्वर्ग कहीं आकाशीय नहीं होता है, जहाँ सुख है विशेष सामग्री है वहीं स्वर्ग है, और जहाँ दुख है दुख की विशेष सामग्री है वहीं नरक है। इसीलिए कहा है ग्रस्त आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने पांचवें यज्ञ में यही कहा है कि हम अतिथि का सत्कार करें। एक व्यक्ति ने कहा जी एक बात और बताओ, अतिथि का मतलब क्या है? हमने कहा जो बिना तिथि बताए आपके दरवाजे पर आ जाता है वो अतिथि होता है। और कहते हैं अतिथि को भगवान की संज्ञा दी है। ये व्यक्ति ने कहा जी बस यही मतलब है जो बिना तिथि बताए आता है? हमने कहा हाँ यही मतलब है। तो ये व्यक्ति भी बड़े कमाल का था। इसने कहा भाई एक बात तो बताओ, जब ये कहता है कि बिना तिथि बताए अतिथि होता है वो आता है, तो चोर भी अतिथि है, ये डाकू भी अतिथि है, ये कौन से तिथि बताकर क्या आते कि आज हम चोरी करने आ रहे हैं, आज हम डाका डालने आ रहे हैं, क्या इनका भी सम्मान करें? हमने कहा हाँ इनका भी सम्मान करो, लेकिन कैसे करो? जैसे महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज के सातवें नियम में कहा है कि सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार और यथायोग्य बर्ताव करो। जो जैसा है उसके साथ में वैसा व्यवहार करो। अगर कोई साधु संन्यासी है आपका हित चाहता है, आपके बच्चों का हित चाहता है, तो उसका अन्न जल वस्त्र से स्वागत करो। अगर कोई दुष्ट आत्मा है, पापी है, राक्षस है, दुष्ट है, तो उसका वैसी लाठी डंडे से अजी की गोली से स्वागत करो। कहते यथायोग्य सत्कार हम करें, अतिथि यज्ञ करें, और हमारे इतिहास में अतिथि यज्ञ आता है। और इस अतिथि यज्ञ के कारण ही तो भगवती सीता रावण के चंगुल में आई थी, क्योंकि सीता ने यही तो कहा था कि देवर की आन रहे ना रहे लेकिन गृहस्थी की लाज निभाऊ। गृहस्थी की लाज निभाई तभी तो सीता रावण के चंगुल में पहुंच गई। गृहस्थ जीवन में अतिथि यज्ञ करें, आने वाले का सम्मान करें, लेकिन दुष्ट आत्मा का यथायोग्य सत्कार करें। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने ये पांच यज्ञ हमें बड़े अच्छे दिए हैं, जिनके भाव हमारे अंदर आ जाएं तो ये जीवन का हमारे कल्याण हो जाए। और पांच यज्ञ नहीं, आर्य समाज के जो प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी ने हैं, उन्होंने आर्य समाज के सिद्धांत में बहुत सुंदर हमें कहा है कि हम किस तरह से अपने आप को सुधार करके संभाल करके चलें। ऋषि की बड़ी कृपा है। तो एक छोटा सा गीत और आपकी सेवा में महर्षि दयानंद जी महाराज के प्रति कवि के भाव हैं। संसार में रहवर तो बहुत आए। कुछ व्यक्ति कहते हैं जी सब आए रहवर तो ऋषि कौन से अलग आए। हमने कहा ऋषि को इसलिए अलग कहते हैं, सबसे ऊंचा स्थान इसलिए कहते हैं कि जितने महापुरुष आए अगर हमें सबने भवसागर से पार किया है तो महर्षि दयानंद जी ने हमें तैरना सिखलाया। अगर ऋषि हमें तैरना ना सिखलाते तो वो तो चले गए थे, फिर कौन हमें भवसागर से पार करता है? ऋषि ने कहा कि मैं रहूं ना रहूं लेकिन तुम्हें वो तरीका वो युक्ति देकर के जा रहा हूं कि जिससे तुम अपने जीवन को आगे सही दिशा देते चलो। तो कवि के भाव ऋषि के प्रति,
जितने भी आए यहाँ दुखी हरने दुखियों का मानव को देने सहारा, कोई अवतार कलंदर या कोई पीर पैगंबर नहीं ऋषि का पहला नंबर, हाँ ऋषि का पहला नंबर। जितने भी आए यहाँ दुखी हरने दुखियों का मानव को देने सहारा, कोई अवतार कलंदर या कोई पीर पैगंबर नहीं ऋषि का पहला नंबर। देवों के देव ने आकर निहारा, देवों के देव ने आकर निहारा, अज्ञानिता में फंसा मानव बेचारा, देखी के दिल किसका दुखा सबसे पहले, ऐसी दशा में किसने भला हमको उभारा, कोई अवतार कलंदर या कोई पीर पैगंबर नहीं ऋषि का पहला नंबर, ऋषि का पहला नंबर। जितने भी आए यहाँ दुखी हरने दुखियों का मानव को देने सहारा, कोई अवतार कलंदर या कोई पीर पैगंबर नहीं ऋषि का पहला नंबर।
जिसने हमको जीना सिखा।
हमारी भूल तो ये रही है, केवल ऋषि ध्यान ही नहीं, महापुरुषों के जीवन को हम देखें, जिसने हमें जीना सिखाया हमने उन महापुरुषों को अपने बीच से विदा कर, जिसने हमें अमृत पिलाया हमने उसको जहर पिलाया, लेकिन उन महापुरुषों का क्या कहें जिन्होंने जहर पीने के बाद भी हमें अमृत पान कराया, हम उनके लिए नतमस्तक हो जाएं। कवि के भाव हैं,
जिसने हमको जीना सिखाया, जिसने हमको जीना सिखाया, जीना सिखाया, जीना सिखाया, जिसने हमको जीना सिखाया उसी को हमने जहर पिलाया। पर फिर भी दिल से लगाया वो कातिल ऐसी दया ऐसी क्षमा, जिसमें भरी है कोई अवतार कलंदर या कोई पीर पैगंबर, ऋषि का पहला नंबर, हर ऋषि का पहला नंबर, ऋषि का पहला नंबर, ऋषि का पहला नंबर।
मैं ऋषि स्वामी दयानंद जी महाराज की कृपा से अपने जीवन को शुद्ध बनाने की दिशा में ले जाने की प्रेरणा मिलती है। ऋषि का धन्यवाद। बहुत सुंदर किसी शायर ने कहा है कि जी में आता है उस महफिल को मिला दुखा के। शायर कहता है जिस ऋषि में उस महापुरुष का उस दिव्य दयानंद का नाम नहीं आता, तो कवि कहता है जी में आता है उस महफिल को मिला दू खाक में, जिस किसी महफिल में जिक्र महऋषि होता नहीं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।